Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंथ में आज के अंत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ विभिन्न खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है राजेश।
सेंसेक्स एंड निफ्टी रिकॉर्ड हिस्टोरिक हाईज। Sensex closes at 79,243, Nifty settles at 24,045. Northeast will be a hub of Made in India chips, says President of India Draupadi Murmu. And Brent crude trades above $85 per barrel in global commodity exchange.
घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे। सेंसेक्स 79,243 अंक और निफ्टी 24,045 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पूर्वोत्तर भारत में निर्मित होने वाली चिप्स का हब बनेगा और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल से ऊपर। और अब शेयर बाजार की खबर पे नजर डालते हैं। भारतीय घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त तथा नए रिकॉर्ड के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 569 अंक यानी 0.72% के उछाल के साथ 79,243 अंक पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 176 अंक यानी 0.74% ऊपर आकर 24,045 पर पहुंच गया। बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.17% की बढ़त देखी गई, हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.57% की गिरावट भी आई।
इंडियाज इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी रोज मोर देन 0.5% एंड क्लोज्ड एट अ रिकॉर्ड हाई टुडे। द सेंसेक्स एडवांस्ड 569 पॉइंट्स और 0.72% टू क्लोज एट हिस्टोरिक 79,243। Nifty climbed 176 points or 0.74% to settle at 24,045. Continued bullish momentum is anticipated despite potential FII selling amid rising US bond yields. 300 companies hit their 52-week high and 26 hit their 52-week low. In the NSE Nifty, 167 companies hit their 52-week high and 15 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, mid-cap index was up by 0.17%, while the small-cap index was down by 0.57%. In the Sensex index, 24 out of 30 companies registered gains. The top three gainers today were Ultra Cement, 5.07%, NTPC 3.19%, and JSW Steel 2.38%. Conversely, the three major laggards were Larsen & Toubro 1.13%, Sun Pharma 0.42%, and Nestle India 0.2%. In sectoral indices of the BSE, 15 out of 20 logged gains. The top three gainers were PAR 1.74%, Information Technology 1.65%, and Tech 1.59%, whereas Industrials 1.47%, Capital Goods 0.07%, and Consumer Durables 0.06% were the three major laggards. The overall market breadth was negative out of 4,008 companies. The shares of 1,510 companies advanced, 2,388 declined, and 110 remain unchanged.
और श्रोताओ, रुपए की हम बात करें तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे ऊपर चढ़कर 83 रुपए और 46 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.15% की गिरावट के साथ 105.89 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी ऐतिहासिक ऊंचाई हमने देखी। हालांकि यह सिलसिला लगातार चल रहा है, हर महीने एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है और अब तो ये ऐसी आम बात सी हमें लगने लगी कि एक सप्ताह में ऐसा दो बार भी हो जाता है। कैसा है ये मार्केट का जो एक रास्ता हम लेकर के चल रहे हैं, देख रहे हैं?
नहीं देखिए निखिल, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इस हफ्ते में ये तीसरी बार लगातार तीसरे दिन है जब मार्केट से नया हाई पे क्लोज हुई है और मतलब इतनी तेजी से मार्केट बढ़ रही हो इतना ऐसा देखा नहीं गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, इमीडिएट कोई इवेंट्स हुए। हालांकि जो मुझे लगता है जो मार्केट में जो बढ़त है उसका सबसे बड़े जो कारण मुझे लगता है कि एक तो जो चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद एक जब चुनाव के नतीजे आए तो एक ऐसा माहौल बना कि शायद इस बार सरकार जो है सिर्फ एक पार्टी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगी, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी अस्थिरता रहे या इंस्टेबिलिटी रहे। लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है एक बात बड़ी साफ होती जा रही है कि वी विल हैव इट लुक्स कि वी विल हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो एक तो ये है जब स्टेबल गवर्नमेंट है और वही सरकार है जो पिछले 10 साल थी देश में, तो अगले 5 साल भी वही सरकार होने रहने वाली है। तो एक ये बात बड़ी क्लियरली इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो दूसरा आप देखेंगे जैसे कि कॉरपोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स क्लॉक कर रहे हैं और आप हिंदुस्तान के उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो स्टेबल है ही है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बने हुए, इन्फ्लेशन हो महंगाई दर हो वो भी तकरीबन अभी भी मतलब कंट्रोल में है। ठीक है, अभी जो 4% का दायरा है उसके उस तक नहीं स्टेबल नहीं हुआ है वहां पे आके, लेकिन फिर भी एक जनरल इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। फूड प्राइसेस का प्रेशर बना हुआ है लेकिन सरकार और आरबीआई लगातार मतलब कोशिश कर रहे हैं और इसी यही कारण है कि आरबीआई ने अभी भी इंटरेस्ट रेट्स में कमी नहीं की है। तो मुझे लगता है ये सब जो कारण है एक स्टेबिलिटी, अच्छा फिर जो अभी इमीडिएट रीजन मॉनसून एक इस समय बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, तो मॉनसून भी अब जैसे जैसे समय निकल रहा है हम देख रहे हैं देश के सभी भागों में तकरीबन अब वो समय से पहुंच रहा है। मतलब इट इज कहीं कहीं है जहां पैची है बट ओवरऑल देर इज नो कंसर्न मॉनसून को लेकर भी कोई अभी कंसर्न। तो मुझे लगता है ये सब कारण है जो एक पॉजिटिविटी फ्यूल कर रहे हैं और इसीलिए शायद मार्केट जो है फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरा दिन है जब न्यू हाईस पे है।
वैसे ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो मुनाफा वसूली भी हो रही है, इसके क्या कारण हम मान सकते हैं?
नहीं, मुनाफा वसूली अगर हो रही है तो मेरा मानना, मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं आप एक आइए अपना एक लेवल जो है तय करिए कि हाँ मैं इस शेयर को खरीद रहा हूं, अगर मुझे इसमें 10% रिटर्न मिलेगा तो भाई मार्केट में आप आए क्यों हैं। तो ठीक है आप आइए और अगर आपको मुनाफा वसूली कोई मतलब कोई गैर वाजिब बात तो है नहीं, हम सब लोग जो है अगर मार्केट में जो भी निवेश करता है वो किसी न किसी मतलब इसी वजह से निवेश करता है कि भाई वो कोई ना कोई कमाई उससे या प्रॉफिट देख रहा है, तो ठीक है वो अच्छी बात है। और एक और मुझे बात जो आप देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी एफआईआई जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि एफआईआई सेल कर रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर
वो खरीद रहे हैं
और काफी डिफरेंस इज क्वाइट मतलब इट्स नॉट दैट कि बहुत कम डिफरेंस हो, डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी वाइड। मतलब कहीं अगर वो 5,000 करोड़ का कहीं तक का बेच रहे हैं तो यहां पे हम मतलब 3,000 करोड़ के आसपास का एफआईआई सेलिंग है तो यहां 5,000 करोड़ की बाइंग है, तो विच ऑल्सो शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड इंडिया इज ग्रोइंग। मतलब It also signifies stability of Indian stock market, which is now comprises a larger part of domestic investors than what we earlier we used to have when FIIs used to sell, markets used to really go down. So that kind of scenario also we are coming out now.
Exactly. So Siddharth, you mentioned about the euphoria being because of political stability, good monsoons, and also, you know, robust economic data. What about union budget? It seems people are now looking forward to the union budget, and they are looking, especially the middle classes, looking forward to it because they are anticipating that there is going to be a benefit coming their way.
नहीं देखिए राजेश, आप जो बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल है, क्योंकि बजट अब मुझे लगता है 23, 24 जुलाई, 22, 23 कुछ ऐसी तारीखें आ रही हैं जब आएगा जुलाई के तीसरे सप्ताह में, तो बिल्कुल जैसे जैसे बजट पास आएगा उस तरह से जो है वो भी एक कारण होता है मार्केट यूफोरिया के लिए। और क्यों केवल आप केवल मिडिल क्लास या टैक्स जो जिनको टैक्स में कंसेशन जो देख रहे हैं लोग, वही नहीं, मुझे लगता है पूरा जो इंडस्ट्री हो या ओवरऑल दुनिया की भी नजर हिंदुस्तान के बजट पे इस समय पे होती है। और इस वजह से ये बजट क्यों खास है, क्योंकि ये इस नई सरकार का पहला बजट होगा, तो ये एक रूपरेखा देगा कि अगले 5 साल की सरकार एक रूपरेखा प्रस्तुत करेगी, वो विजन डॉक्यूमेंट या जो भी हम उसको बोलें, कि क्या क्या उसके फोकस एरियाज होंगे। तो ये भी एक कारण है इफोरिया का, बिकॉज सेम गवर्नमेंट हैज कम टू पावर, सो द पॉलिसीज आर लाइकली टू कंटिन्यू विद एंड दे गोइंग टू बी मोर बोल्स्टर्ड।
सो इज द करंट अपसाइड मोमेंटम गोइंग टू फेस एनी रेजिस्टेंस एज वी गो टू 24,100 फ्रॉम हियर? टुडे इट इज 24,045 लेवल। And do you think there's going to be a period of consolidation going forward, or a minor weakness could emerge from the highs?
See, Rajesh, what you're saying is, I think that is the basic nature of the market.
Yeah.
It that all those things, if they happen, they should happen. They also signify that market is
But Siddharth, I'll be very honest with you.
Yeah.
I was a little worried when you mentioned there is no concern. There's
no.
Everything is fine. You know,
no, Rajesh, why?
Us that everything
no,
is okay.
Why I'm saying? Why
very
I'm saying?
Suspicious.
Yeah. No, why I'm saying? See, yes, all of us are kind of little bit this thing. Matlab, not. I would not say surprised, but yes, the way markets are, the euphoria. Obviously, it kind of raises our.
Antennas are
yeah, up. Little bit, but what is happening also, see, the way people are investing in India is also changing, as we were talking before before the program that one of our young colleagues, how he's investing in markets, he's making profits. So I think the younger generation is now on a daily basis people are majorly into stock investing. Most of them, I would say the younger lot more are directly in the market. Some of them may be coming through the SIP route, which is also we are seeing, the numbers are increasing,
it's
astonishingly
yeah.
high
yeah.
numbers.
Yeah.
So what I am, and why I am saying there is no, see, as far as domestic factors are concerned, there is nothing within India currently. We can't see anything except inflation, which is a concern. But it is not a concern which could, pull down the market by huge margins.
Actually, why should we doubt? We should have confidence in our fundamentals. We should have confidence in the current scenario.
Rajesh, if you see in the last two decades, if you see from 2000 to 2010 to 2020, none of the times I think the crisis, any crisis, economic crisis, emanated from India. We were always affected because of some thing happening somewhere outside of India. In fact, places which are seen as very stable, but those were the economies where the problem started. But yes, since we are all coupled, so we were also impacted. So I said, because of that, I said, yes, tomorrow if we are having small 2-3 in the world, we are having these small conflicts going on, which have been going on for a long time. So anything new happens, all those kind of disturbance obviously can bring down the markets, but would they impact the market to such a huge amount that it would see a crash? So I don't see that kind of scenario, at least for now.
What about the inflation? Even the RBI governor said that that elephant is still there and we should be cautious of it.
Yeah, and he said, elephant, when it goes back, it takes time to go back.
Yes.
So I think, see, the primary reason for us, we're facing problem on the food side, basically because of the high food prices. So I think we have been taking steps. We have put we put ban on export of sugar, rice. We are also now indicated that we were open to bring down duties on imports of wheat if required. But I don't see a scenario, even rice. I think we are sitting 3 times of our buffer stock. But yes, somehow the prices are elevated. Pulses is an area of concern. And that, again, government has introduced fresh stock limit because they want the supplies to be there in abundance, and which would control the prices. But besides that, as governor has said, we are still we are focused in balancing growth with inflation. And that is why he said we still don't want to touch the interest rates or bring them down, because that could impact their whatever the fight on inflation. But he also has exuded confidence that India should be achieving this year what they have estimated 7.2% growth.
Mm.
So, and even all the international IMF or ADB, all the agencies have stood by for a strong good growth for India this year.
Quickly about the rupee, it appreciated 11 paisa today. And we were discussing with one of the experts, and he attributed that to the current account surplus that we have after 10 quarters to the tune of 5.7 billion.
So I think rupee, I think whatever depreciation also, and if you see, it's been in a very narrow band. So I don't see much of a concern on that, because we have huge forex reserves now. We are sitting almost upwards of some $650 billion. So, and there are times, sometimes these are all I think daily movements. We should not focus on what, as I would say, as the central bank always say, that they focus on the orderly movement of rupee rather than, you know, looking at it on the daily movement. As long as it is orderly, it's not, no, there is not a rapid rise or a rapid fall. So I don't see that as an area of concern.
सिद्धार्थ अभी आपने बजट का जिक्र किया था. बजट की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ये 7वां बजट होगा जो अब वो पेश करेंगे. तो ऐसे में मार्केट को किस तरह का असर पड़ने की संभावना, खासतौर पे उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी मार्केट की वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें, और जिस तरह से शेयर मार्केट में हमारे लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इसे मेंटेन करने के लिए कुछ खास लाना होगा, खासतौर पर पीएलआई की अगर हम बात करें या फिर इससे जुड़ी हुई और मार्केट्स की बात करें. इस बीच में ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि बाहर की जो भी कंपनियां हैं वो भारत की उन कंपनियों में पैसा ज्यादा लगा रही हैं जिन्हें कभी भारत में भी बहुत छोटा समझा जाता था.
नहीं, आपने निखिल ठीक कहा. और देखिए, जैसा अभी राजेश बोल रहे थे कि लोगों की आशा है कि कुछ उनको टैक्स के जो उनके स्लैब्स हैं उनमें राहत मिलेगी, तो स्वाभाविक है अगर आप कम टैक्स देंगे अपनी इनकम पे तो कुछ पैसा आपके हाथ में बचेगा, तो वो भी मार्केट में ही आएगा पैसा. मैं मानता हूं उसका एक बड़ा भाग तो कम से कम आएगा ही मार्केट में. और जहां तक आपने बात की पीएलआई की, मुझे लगता है यस, पीएलआई में हम जैसे कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं. अगर आप मोबाइल फोन्स को ही ले लें तो पिछले तकरीबन 12 महीने में पिछले साल हमने तकरीबन $15 बिलियन का एक्सपोर्ट किया केवल मोबाइल फोन्स का. तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन एरिया वेयर वी आर सीइंग अ गुड रिजल्ट ऑफ पीएलआई. और मुझे लगता है थोड़ा सा पीएलआई को अब हम और जैसे फार्मा में, इन एरियाज में भी एक्सपैंड करेंगे इस साल. तो पाई तो वही रहेगा शायद 2 ट्रिलियन या कुछ, हमने एक वो बना रखा है उसके लिए कि इतने, इससे ज्यादा हम पीएलआई में नहीं देंगे पैसा. लेकिन मुझे लगता है जो एरियाज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नए एरियाज में आइडेंटिफाई होगा और पीएलआई का रिजल्ट बहुत अच्छा है. दूसरा राजेश, जो मुझे लगता है इंडिया का फोकस रहेगा, जो आज द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा है कि इस बार का मतलब जो बजट होगा वो आपको विजन डॉक्यूमेंट के तौर पे भी उसको जो है होगा, अगले 5 साल में जो सरकार की रूपरेखा होगी क्या वो करेगी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए. तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस सरकार का बहुत फोकस रहा है, तो वो रहेगा. एग्रीकल्चर में हमने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है अभी भी जो स्टोरेज की एक इश्यू है, तो जो रूरल एरियाज में, तो हम उसके ऊपर भी मुझे लगता है कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे जो कि कॉन्क्रीट होंगे, जो और ज्यादा जिनके हम रिजल्ट जल्दी देखेंगे.
बस इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, चूंकि हमारे पास टैक्स फाइल करने का जो एक टाइम होता है 31 जुलाई तक टैक्स फाइल करने का भी डेट होगा, उसी समय हमारे पास बजट भी आया होगा, तो मार्केट का लास्ट वीक जो जुलाई का होगा ऐसा नहीं लगता है कि कोई उथल पुथल भरा सा होगा, या सिंपल वे में हम देख रहे हैं इससे.
नहीं देखिए निखिल, जहां तक मार्केट हम लोग के टैक्स फाइलिंग है, तो मुझे लगता है अब लोग जो वो टेंडेंसी थी ना, एक वो जो बीच में था कि 31 जुलाई से डेट बढ़ जाएगी, पहले ये बहुत चलता था,
तो
इस सरकार ने उन चीजों पे भी विराम लगाया है कहीं ना कहीं, एक जो कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, जो भी हम जो भी डेडलाइंस हैं, उनमें कोई हम रोज रोज या किसी बेवजह बदलाव नहीं करेंगे. तो मुझे लगता है अब ज्यादातर लोग बहुत लास्ट तक वेट नहीं करते हैं, खासकर जो सैलरीड क्लास है उनकी तो इनकम बहुत क्लियर होती है अब तक, और अब तक सबके पास पिछले कारोबारी साल का लेखा जोखा आ जाता है. तो मुझे नहीं लगता वो होगा. हाँ ये जरूर है कि मार्केट में उथल पुथल बजट के अनाउंसमेंट से जरूर आ सकती है, लेकिन जो टैक्स फाइलिंग से आप जोड़ के कह रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कारण, लेकिन बजट के जो अनाउंसमेंट्स होंगे वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनसे उथल पुथल जरूर हो सकती है.
अब एशिया और यूरोप के बाजार पर नजर डालें तो एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज नकारात्मक रुख देखा गया। केवल सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.35% के लाभ में रहा। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 2.06% की गिरावट आई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.90% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई सूचकांक 0.82% नीचे आ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.29% की गिरावट आई। यूरोप के प्रमुख बाजार आज ज्यादातर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। केवल जर्मनी का डेक्स 0.27% के लाभ में चल रहा था। वहीं समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक्स 0.55% के नुकसान में था और लंदन का फुटसी 100 0.28% बढ़त कर कारोबार कर रहा था।
यूएस स्टॉक मार्केट एक्सटेंडेड अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑन वेडनेसडे विद द एस&पी 500 एंड नैस्डैक रजिस्टर्ड गेन्स व्हाइल द डाउ जोन्स ड्रॉप्ड। The Dow Jones settled with a loss of 0.03%. The Nasdaq climbed 0.49%, while the S&P 500 ended up by 0.16%. Very quickly, Siddharth, there seems to be a cautious approach going forward because people are waiting for the presidential debate to take place. People are waiting for the inflation figures to come up by the Fed Reserve in its report. What is there on the anvil?
See, basically, Rajesh, I think, yes, as you pointed out, these two, you know, obviously, events are the ones which are unfolding, and obviously people are waiting for the inflation data also in US, and that is why we are seeing some bit rise in bond yields in US. So I think, and US Treasury bonds being the safest instruments as far as any investment is. So that is why also I think we have seen some outflow from the FIIs. So, but I don't see anything major happening in terms of even interest rates going up in US is something which has been factored in. And yes, US elections, obviously, they have become very unpredictable. If I would, I have to say something, as we saw last time also. So I think that we'll have to see as things, time progresses.
Unfolds.
Yeah.
Moving on, President Draupadi Murmu said in her address to the parliament today that the new government is going to present its first general budget in this parliament session, which will be an effective document of its far-reaching policies and futuristic vision, and reforms will be fast-tracked. The president said that the country has risen from the 11th position to become the fifth largest economy in 10 years. Listing out the priorities accorded to the agricultural sector, the president said agro-based industries, dairy and fishery-based industries are being expanded in villages. She added that a major problem of small farmers is related to storage, and the center has commenced work on a scheme to create the world's largest storage capacity in the cooperative sector. In her nearly hour-long address, President also highlighted the government's initiatives for infrastructure development, saying that over 3,80,000 kilometers of village roads have been constructed in the last 10 years under the Prime Minister Gram Sadak Yojana. On the development of northeastern states, the president said the government is working to make this region a strategic gateway under its Act East policy. The president added that a semiconductor plant is being established in Assam at a cost of 27,000 crore rupees. She asserted that the northeast will also be a hub of Made in India chips. Highlighting the initiatives taken by the government for the northeast region, the president observed that the center is working for lasting peace in the region, and several problems related to the area have been addressed in the last 10 years. Siddharth, very quickly about the vision document that the president has talked about. How do you see it? What could it be if for the 5 years?
See, basically, I think it will be basically in continuation of what we have seen in last years in terms of government on its fiscal consolidation path, which it has taken post-COVID. I think they would continue to move forward on that. Maybe we might see a better fiscal deficit target, which was announced in the February interim budget. I expect it could be further improved as the government is sitting, and there could be a lot of new schemes focused on farmers, social welfare schemes for lower strata of the society. As you also said, obviously we have been talking, infrastructure is a very key area for this government, because until unless you have infrastructure focus, you will not have investment. I think another big area would be, I think some big announcements, some key institution take coming up in terms of attracting investment from out from overseas, and especially in a scenario when we are seeing people moving out of China. So Vietnam, Cambodia continue to be the attractive.
Perhaps something to do with made in India and also ease of doing business.
Ease of doing business, all that, yes, will continue. I think we will move forward maybe more aggressively on those issues. So farmers is one issue. Then as far as you already said, semiconductor, we have already announced some 3 plants. One is a SAMT, I think another in Gujarat. So almost 60,000-70,000 crores we are spending on that. And semiconductor is the future in terms of electronic gadgets, the way it is being used in, you know, in our credit cards, in the automobile sector, in as far as mobile phones. So because of its heavy use and it's a very niche technology, so I think that is why the government is focusing. And as she rightly said, we are projecting east in the northeast as one of the hubs for semiconductors. So I think those would be broadly areas which would be focused. Women also could be one area of where
the futuristic vision.
Futuristic vision in terms of vision would be where we want to be, you know, from fifth to probably, I think, next five years, very soon we should be the third largest economy in the world. So I think the vision would be to take, as the vision is already announced, I think 2047, we want to be a developed, Viksit Bharat, developed economy. So I think it will be what all needs to be done to, you know, gather pace and reach that target of Viksit Bharat faster. So I think all that broadly would be this, and as you said, ease of doing, plus I think there would be another thing where we would be focusing would be in terms of stability in our tax regime. So I don't see much tinkering, but I do see that there could be policy changes to make our taxation system more easy for people who are compliant and more stringent for people who are non-compliant.
सिद्धार्थ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा. प्रेसिडेंट ने एनर्जी की भी बात की, एनर्जी सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें ग्रीन एनर्जी का अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल. मार्केट के लिहाज से देखें तो लगातार ये बढ़ता हुआ क्षेत्र में नजर आता है. आपको क्या संभावनाएं इसमें नजर आ रही है, निवेश की नजर से अगर हम देखें तो?
नहीं, देखिए ना, निवेश के तौर पर आप देखिएगा तो ग्रीन तो मतलब फ्यूचर जो है वो हम क्लीन एनर्जी की बार बार बात कर रहे हैं. तो आज आप जब ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे ग्रीन गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, तो ग्रीन और क्लीन एनर्जी की बात इसलिए भी हो रही है बिकॉज वो नॉन पॉल्यूटेंट है, बिना किसी बहुत ज्यादा, बट यस, उसमें अभी निवेश हो रहा है. तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिस इज एन एरिया विच इज अ फ्यूचर ग्रोइंग एरिया, बिकॉज एज यू गो फॉरवर्ड ऑब्वियसली देर इज टू मच ऑफ फोकस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. सो ऑब्वियसली
निवेश करना फायदेमंद रहेगा.
बिल्कुल, वो तो कहने वाली बात ही नहीं, ऑब्वियस है, बिकॉज दिस इज द न्यू एरिया विच विल सी द progress.
So right. Apart from the infra sector, the president is also focusing on the supply chain management, which is another big thing, as I read in between the lines.
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश. सप्लाई चेन की जो बात है उस पर अभी दो दिन पहले आज राष्ट्रपति जी ने उसके तरफ हम लोग का ध्यान आकर्षित किया है. दो दिन पहले आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात कही थी कि कृषि के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण जो है उपलब्धियां पिछले 10 सालों में हमने प्राप्त की हैं, लेकिन ये एक एरिया सप्लाई चेन, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो कृषि उपज है वो प्रॉपर सप्लाई चेन ना होने की वजह से वेस्ट हो जाता है. इसीलिए शायद हम स्टोरेज की भी बात कर रहे हैं, उसको फास्टर मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं.
मूविंग ऑन, ऑयल प्राइसेस क्लाइम टुडे, सप्लाई डिसरप्शन रिस्क फ्रॉम राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इन द वेस्ट एशिया हेल्प टू काउंटर डिमांड फियर्स आफ्टर द सरप्राइज बिल्ड इन यूएस स्टॉक पाइल्स. Brent crude was up by 0.52% to $85.69 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude rose 0.44% to $81.26 per barrel when reports last came in.
Multi-commodity exchange में वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इस कीमती धातु का वायदा मूल्य अगस्त 2024 के लिए 0.28% की तेजी के साथ 71,288 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. वहीं जुलाई 2024 के अनुबंध के लिए चांदी मामूली रूप से 0.03% की गिरावट के साथ 86,937 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार.
आप दोनों को, राजेश और निखिल दोनों को धन्यवाद.
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, सेंसेक्स एंड निफ्टी रिकॉर्ड हिस्टोरिक हाईज. सेंसेक्स क्लोजेस एट 79,243, निफ्टी सेटल्स एट 24,045. Northeast will be a hub of made in India chips, says the President of India. And Brent crude trades above $85 per barrel in global commodity exchange. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.